छड़ के ना जा तू माफ करी मेरिया खतां ओ तू माफ करी मेरिया करी मेरिया खतां ओ तू माफ करी मेरिया खतां
स्वागत है आपका भक्ति संगीत में और इतनी खूबसूरत इतनी रूहानियत से भरी शुरुआत ये गीत जो आपने सुना इसके गायक आज हमारे साथ हैं भक्ति संगीत में वो कौन है आप जानते होंगे नाम से शायद आप वाकिफ हों लेकिन उनकी जिंदगी के जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को ही आज हम जानने की कोशिश करेंगे जी हाँ हमारे साथ हैं निरंकारी मिशन के जाने माने गायक सुरेंद्र खान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका
बहुत बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले मैं एक शेर से आगाज़ करना चाहूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ तो मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार धन्यवाद प्रवान हो
जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपको भी सुरेंद्र जी और सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहेंगे आपका कि इतने बिजी शेड्यूल में से आप यहाँ आए हमारे मिशन में ये कोशिश हम कर रहे हैं कि भक्ति संगीत के माध्यम से न केवल कुछ ऐसे गीत अपने लिसनर्स तक हम पहुंचा सकें बल्कि उन गीतों को पीछे की जो कहानियां हैं जो गायक हैं जो गीतकार हैं उनसे भी रूबरू करवा सकें तो आज हम न केवल गायक सुरेंद्र खान को जानने की कोशिश करेंगे, हम एक भक्त सुरेंद्र खान को भी जानेंगे और बाहरी दुनिया में जो आपने अपना नाम कमाया है, इतने अवार्ड्स आपको मिले हैं, उनके बारे में भी आपसे ज़रूर जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जी आपके बचपन से।
जी बचपन मेरा जैसे आम बच्चे होते हैं वैसा ही है, और जो सबसे बड़ी जो खासियत बात जो खास बात है वो ये है कि बचपन से ही हमें बाल संगत के साथ जोड़ा गया
जी।
और बाल संगत के साथ जुड़ते ही जो जीवन में जो बदलाव आने शुरू हुए, क्योंकि बचपन तो आपको पता है शरारतों वाला बचपन सबका ही होता है, मेरा
जी,
भी था
जी, जी।
और जो बड़ी बात थी वो ये थी कि बाल संगत में जाते थे तो शुरू से ध्यान इस तरीके का था कि नहीं, हम औरों से बहुत अलग हैं, हमें जिस चीज़ की रोशनी है वो और लोगों को नहीं है, जो क्योंकि हमेशा ही इस चीज़ का हमें रहता था। सो मेरा बचपन शुरू से सत्संग में गुजरा है ज्यादा।
जी। हमारे मिशन की अगर बात करते हैं तो सन 1980 से लेकर आगे आने वाले कितने सालों तक छांगा बांगा कव्वाल के नाम से मशहूर हुए थे आपके परिवार के सदस्य, आपके ताया जी थे
जी, मेरे ताया जी थे।
तो क्या ये मान लें कि मिशन की ज्ञान की जो दात है आपको बचपन से मिली, उसके साथ संगीत भी मिला?
हाँ जी बिल्कुल, संगीत भी मुझे बचपन से ही मिला। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पटियाला घराना से ताल्लुक़ रखता हूँ म्यूज़िक में, और मेरे जो उस्ताद हैं खान साहब बाकुर सैन साहब, जिन्होंने मुझे क्लासिकल की तालीम दी, और उसके बाद क्योंकि जैसे खून में ही हमारे म्यूज़िक है, तो मेरे ताया जी मेरे चाचा जी उन्होंने मुझे भी बचपन से गवाना शुरू किया कि थोड़ा थोड़ा करो, तो फिर उसके बाद मुझे इस चीज़ का शौक पड़ गया। तो म्यूज़िक बचपन से ब्लड में ही म्यूज़िक है।
म्यूज़िक आपके ब्लड में है, लेकिन अगर हम किसी स्पेशल जोनर की बात करें, संगीत की एक ऐसी विशेष विधा की बात करें
जी,
तो क्या गाना आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं?
जी जो बाबा जी की कृपा से जो मुझे मिला है वो मेरी ड्यूटी है गज़ल की।
अच्छा।
तो पूरी दुनिया में दास को गज़ल के नाम से जाना जाता है कि गज़ल सिंगर है, तो बस यही है कि मैं शुरू से मुझे गज़ल ही ज़्यादा अच्छी लगी तो मैं गज़ल ही गाता हूँ।
और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
जी जी,
तीन बार आपको अवार्ड ये मिला है गज़ल सिंगिंग में ही।
बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो सुरेंद्र जी आगे बढ़ कैसे सकते हैं अगर आपसे कोई गज़ल नहीं सुने हम?
अरे जी बिल्कुल जी।
तो कुछ आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद वो पूरा गीत हम अपने लिसनर्स को सुनवाएंगे।
जी जी बिल्कुल, आपकी नज़र कर रहा हूँ।
दिल भी क्या चीज है, एक पल में मचल जाता है, देखते देखते कई रंग बदल जाता है, अपने गम का तो इसे होता नहीं गम इतना, जब खुशी गैर की देखे तो ये जल जाता है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। अपनी संवार ले। इस जिंदगी में जिंदगी अपनी संवार ले। टूटा जो फूल शाख से फिर वो जुड़ा नहीं। टूटा जो फूल शाख से फिर वो जुड़ा नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता सजा ले आज को कल का बता नहीं।
सुरेंद्र जी, बचपन की गायकी और बड़े होकर के उसे प्रोफेशन के रूप में ले लेना, उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा दौर होता है
जी।
उस दौर के बारे में बताइए, बचपन में गाते थे आप, किस तरह आपने सोचा कि नहीं मुझे टर्न करना है, अब इसे ही प्रोफेशन लेना है।
जी जी, बचपन में पहले मैं पंजाबी गीत ही गाता था, तो मेरी एक एल्बम भी आई थी पंजाबी, उसका नाम था तैनू चेते कर करके
जी।
तो क्योंकि उस टाइम बड़ा बच्चों का बड़ा नाम हो रहा था, जो भी बच्चा, जैसे मास्टर सलीम ने भी गाया था, उसकी एल्बम हिट हुई
जी जी।
तो उसके बाद काफ़ी बच्चे आए, उन्हीं में से मैं भी एक था। तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज टाइम में, तो वहाँ जो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अशोक गोयल जी, तो उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा कि बेटे तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन जो तुम्हारी आवाज़ है वो इस लायक नहीं जो तुम गा रहे हो
जी
पंजाबी। उन्होंने कहा कि अगर तुम एक बार गज़ल को ट्राई करो तो हम थोड़ा देखते हैं कैसे। तो मैंने,
तो ये वो दौर था जहां जी, से
जी,
आप गज़ल की,
बिल्कुल बिल्कुल
जी।
तो मैंने गज़ल सुनाई, बोले कि अगर तूने जिंदगी में कामयाब होना है तो इससे अच्छी चीज़ तेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। या तो तुम प्योर क्लासिकल गाओ
जी,
और नहीं तो फिर तुम गज़ल गाओ, क्योंकि गज़ल एक ऐसी चीज़ है कि जो हर किसी के मुंह से सजती नहीं है
जी।
तो उनको मेरा लहजा थोड़ा ठीक लगा।
मुंह से निकल तो जाती है, दिल तक नहीं पहुंचती
बिल्कुल,
सामने
बिल्कुल,
वाले
बिल्कुल।
तो ये यही चीज सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं
जी। जी बिल्कुल।
ऐसी कौन सी गायकी में आप कौन सा मसाला ऐसा डालते हैं कि आपके गाने की, आपकी जो आवाज है वो सामने वाले के दिल तक उतर जाती है, उसके पीछे क्या राज है?
जी बिल्कुल, मैं ये भी बताना चाहूंगा। और सबसे जो बड़ा रीजन है वो ये है कि बाबा जी ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है
जी।
क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि बचपन से ही हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा कोई भी काम है वो बिना सदगुरु के कोई काम है ही नहीं। चाहे वो घर का कोई काम है, चाहे कोई बाहर का है, वो सब सतगुरु अगर बीच में है तो हमारा काम शुरू होता है। वो भी इसकी रजा थी कि तुम अब पंजाबी नहीं गा सकते, तुम गजल गाओगे। तो उसका ये नतीजा हुआ कि आगे आगे जैसे जैसे मैं चलता गया, मुझे अवार्ड जैसे आपको मैंने बताया मिलते गए। तो जो आप बात पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा मसाला कौन सा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं खान साहब गुलाम अली साहब का भी शागिर्द हूँ, तो उन्होंने मुझे गज़ल के बारे में सिखाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि गज़ल को हर कोई गा लेता है, लेकिन जो उसका फील है वो हर बंदा उसको नहीं महसूस करता, जो जो चीज़ आ रही है। क्योंकि जो हम लफ्ज़ बोल रहे हैं उसका जो जब तक वो हम अपने आप पे नहीं लेंगे तब तक उसका जो मसाला पूरा हो ही नहीं सकता।
नहीं हो सकता
जी,
बिल्कुल। बड़े गुलाम अली खान साहब की आपने बात की और उन्हीं के नाम से एक अवार्ड भी है जो अमेरिका में, जिसे आपसे नवाजा गया था
कैलिफोर्निया में मुझे। जी जी,
तो बाहर भी आपने धूम मचाई है सुरेंद्र जी, मैं यकीनन उस पर भी बात करने वाली हूं।
बड़ी कृपा है।
लेकिन जानना ये आपसे चाहते हैं, बड़े बड़े स्टेजेस पे आपने परफॉर्म किया है, आप सत्संग में जब गाने बैठते हैं
जी,
तो पहली बार गाना जब आपने यहाँ गीत रूप में गाया था
जी,
तो वो एहसास क्या था और उससे पहले की क्या सोच थी?
जी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सतगुरु के सामने गाना होता है, तो मैं तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जितनी बार भी मैंने यहाँ गाया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार गा रहा हूँ। क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे कोई बंदा बोल भी नहीं सकता, तो सतगुरु ने हमें ड्यूटी दी है कि तुमने गाना है। तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं पहले कभी नहीं आया स्टेज पे, आज आया हूँ, सतगुरु ने मुझे इतनी रहमतें देनी है, इतनी रहमतें देनी है जिसका कि कोई अथाह, जिसको बोलते हैं अथाह रहमतें।
और यहाँ सुनने वाले भी इसके आशीर्वाद से सुन रहे होते हैं,
बिल्कुल,
गाने
बिल्कुल,
वाले भी इसके आशीर्वाद से गा रहे होते
हैं, सतगुरु की कृपा है, बिल्कुल।
तो वो माहौल अपने आप दिव्य हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
कोशिश अब ये करते हैं कि स्टूडियो में भी इसी तरह की सुरीले कुछ अंदाज गूंज जाए, आपका सत्संग में गाया हुआ कोई गीत वो सुनवा दीजिए।
जी जी, जो एक गीत अभी पीछे एक पंजाबी एल्बम थी उसका नाम था कण कण दे विच वसना है तू।
जी जी, बहुत सुनी तो, गई है वो।
जी जी, उसी का एक भजन आपकी नजर कर रहा हूँ।
मेरे दिल विच चलदा की ए दिल दिया सब जाने, मेरे दिल विच चलदा की ए दिल दिया सब जाने, तेरे प्यार दिए छां ताइयों जी रहे हां, तेरे प्यार दिए छां ताइयों जी रहे हां, गल दिल दी की करनी दिल दिया सब जाने, गल दिल दी की करनी दिल दिया सब जाने, चन्ना मेरे दिल नू भी चैन, तेरे नाल चन्ना मेरे दिल नू भी चैन, सुखा वाले दिन सारे सुखा वाली रैन, सुखा वाले दिन सारे सुखा वाली रैने, किदा करा मैं बयान कर सकदा ना, किदा करा मैं बयान कर सकदा ना, गल दिल दी की करनी दिल दिया सब जाने, गल दिल दी की करनी दिल दिया सब जाने अखां पर आईया तेरा वेखे आ जानूरे अखां पर आईया तेरा वेखे आ जानूरे सब तो तू नेड़े में समझे अदूरे सब तो तू नेड़े समझे अदूरे दस होर की कमां तेरे कोल ही रवां दस होर की कमां तेरे कोल ही रवां गल दिल दी की करनी दिल दियां सब जाने गल दिल दी की करनी दिल
सुरेंद्र जी बाबा बुल्ले शाह अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है
जी जी
और उन्हीं की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है जब बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि लेने गए थे ज्ञान और प्रभु को जानना चाहते थे तब उनके गुरु ने कहा था उन्हें प्याज की शायद वो खेप बो रहे थे और गुरु ने उनके कहा था कि बुल्लिया रब दा की पौना एदरो पटना ते उधर लौना तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है विद इन अ सेकंड हो जाती है लेकिन ये काम करती है लॉन्ग लास्टिंग क्या कभी सुरेंद्र खान के साथ ऐसा हुआ है कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो कि नहीं मैंने ये नहीं करना है यहाँ गुरु की सिखलाई काम आती है मुझे अब इस जगह जाना है वो डिसीजन बहुत हार्ड रहा हो लेकिन बाबा जी की कृपा से वो बहुत आसान आपके लिए हो गया हो
जी बिल्कुल जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि हमारे हर एक काम में सदगुरु क्योंकि हमें ये आदत भी है शुरू से क्योंकि बचपन से ये सिखाया गया कि अगर सतगुरु नाल है तो थोड़ा हर काम ठीक है जो मेरे फादर साहब भी मेरे मम्मा भी ये बात जो आप कह रहे हैं वो ये है कि बचपन से ही जो हमें सिखाया गया है कि सतगुरु अगर साथ है तो आपका हर काम पूरा हो जाएगा
जी।
और अगर जिस काम में सतगुरु नहीं है वो आपका काम ही किस काम का है
जी।
तो शुरू से ही हमें ये जो बताया गया है कि सतगुरु ही है जो आपका हर काम कर सकता है मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई अभी 2 साल पहले की बात है मेरा एक शो था वो अचानक से मेरा शो बना वो था चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर नाम से एक थिएटर बना हुआ है और बहुत ही बड़ा थिएटर है उसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी है अंदर चेयर्स वगैरह जो लगी हुई हैं तो वहाँ पे क्योंकि मुझे 3 दिन पहले बताया गया कि आपका शो हम इस तरीके से प्लान तो बहुत टाइम से पहले चल रहा था लेकिन अचानक से मुझे 3-4 दिन पहले ही उन्होंने बताया कि बस इस दिन को आपका काम यहाँ होगा
जी।
तो पासेस बन गए और उसमें एक जो बढ़िया बात थी कि वो सैटरडे संडे उसके बीच आ रहा था तो ध्यान में आया सतगुरु वैसे तो हर काम आप ही करते हैं लेकिन वो बंदे को थोड़ा सा होता है ना कि पता नहीं है ना सतगुरु तुम बस तुम्हें रख सकते हो हमारी और कोई लाज रखने वाला है ही नहीं तो 3 दिनों में सतगुरु ने पता नहीं कुछ ऐसा कैसे किया पासेज भी बट गए मुझे लगता था कि उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 लोग आ सकते हैं क्योंकि गज़ल कुछ लोग ही हैं जो गज़ल को सुनते हैं
क्लास एक जी क्लास
जी एक एक क्लास है बिल्कुल बिल्कुल वही सुनते हैं तो सतगुरु की कृपा से यानी कि सिमरन किया सच्चे पाशाह आप कर सकते हो जो भी कर सकते हो जो भी आप करोगे वही हमारे लिए अच्छा होगा
जी।
आप यकीन मानिए कि वो 2000 की कैपेसिटी वाला हॉल उस दिन कम पड़ गया और लोग सीढ़ियों में बैठे हुए हैं और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये सदगुरु हाजिर नाजर है कि जो बड़े बड़े वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े डॉक्टर हैं या वकील हैं या एक जज साहब भी हैं मेरे जो दोस्त हैं वो सारा प्रोग्राम खड़े होकर सुन के गए वो कहते हैं कि यार हमें सीट तो मिली नहीं हमें आगे जाने के लिए जगह भी नहीं मिली
ये आपके पास वही वो मसाला है जिसका हमने जिक्र किया था
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
सुरेंद्र जी आपने देश में ही नहीं विदेशों में भी परफॉर्म किया है वहाँ के कल्चर को भी आप देख करके आए हैं गायकी को लेकर या वहाँ के माहौल को लेकर आप क्या महसूस करते हैं
मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि शायद अगर मैं बाहर की बात करूं थोड़ा, क्योंकि ये बात थोड़ी दुनियावी बात है कि अगर गज़ल को सुनने वाले लोग जो इंडिया में हैं उनका और बाहर वालों का बहुत फ़र्क है, जो चाहे वो इंग्लैंड में रहते हैं, चाहे वो कनाडा में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं। दास को हर जगह जाने का मौका मिला है। जो यहाँ के लोग हैं वो गज़ल को सुनते हैं और उसको इंजॉय करते हैं, यही बात है। और बाहर के लोग हैं वो सुनते भी हैं और ध्यान से सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो एक एक लफ्ज़, वो अल्फाज जितने भी मुश्किल हों, वो अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आई ना तो वो उठ के बोलेंगे कि ये हमें इसका मतलब बताया है जाए, या कोई पूछता ही नहीं, या कहते कि हिंदी गज़ल होनी चाहिए जी हमें, बस ये ऐसा होना चाहिए। और वहाँ के लोग इतने अच्छे तरीके से और इतने सलीके से सुनते हैं, को कभी आपको मौका मिले तो आप भी खुश हो जाएंगे कि वाकई बहुत अच्छा है इसमें।
जी, इस वक्त तो आपको स्टेट नहीं, कंट्री नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सुन रहे होंगे हमारे लिसनर, हमारे जो भक्ति संगीत है उसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो मैं चाहती हूँ पहले एक आपकी गजल सुनवा दी जाए।
जी जी।
फूल खिलते हैं चमन में, कभी मुरझाते हैं, तेरे अंदाज खुदाया, तेरे अंदाज खुदाया, न समझ आते हैं। फूल खिलते चमन में, कभी मुरझाते, अपने दम पर तो जहां में है गुजारा मुश्किल, अपने दम पर तो जहां में है गुजारा मुश्किल, साथ तेरा हो तो रस्ते भी निकल आते हैं। तेरे अंदाज खुदाया, तेरे अंदाज खुदाया, न समझ आते हैं। फूल खिलते चमन कभी मुरझाते हैं, देखता है दुनिया का तमाशा रोशन, देखता है तेरी दुनिया का तमाशा रोशन, वक्त पढ़ने पे सभी लोग बदल जाते, तेरे अंदाज खुदाया, तेरे अंदाज खुदाया, न समझ आते हैं। फूल खिलते चमन में, कभी मुरझाते, खिलते चमन में कभी मुरझाते।
क्या बात है, क्या बात है। सुरेंद्र जी, आप निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हैं, आपको ज्ञान प्राप्त है, गुरु के प्यारे भक्तों में हैं आप, कभी बाहर की दुनिया में भी आप प्रोफेशनली भी गाते हैं
जी,
क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं प्रोफेशन में भी एक जिम्मेवारी मेरे कांधों पर है कि मुझे अपने मिशन की खुशबू फैलानी है
जी, बिल्कुल।
एक फूल की तरह है आप हमारे मिशन के, तो वो खुशबू फैलाने का जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जी,
वो आप महसूस करते हैं, और किस तरह आप ये कोशिश करते हैं कि नहीं मेरे मिशन का नाम मेरी वजह से और ज्यादा फैले?
जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर काम करता तो सदगुरु अपने आप ही है
जी,
और शुरू से ही जो दिमाग में ये चीज़ है जो आप अभी कह रहे हैं कि मेरे अगर मेरी जान किसी भी तरीके से मिशन के काम आए, तो कहीं भी जाते हैं किसी न किसी बात पे तो ये बात निकल ही आती है, चाहे वो बड़ा प्रोग्राम हो चाहे वो छोटी महफिल हो, तो ये क्योंकि गुरु की चर्चा अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा कुछ गाना वो गाना नहीं होगा
जी।
क्योंकि जैसे एक वो भी थी कि किसकी खलकत है, खुदा क्या है, बंदगी क्या है, जिसे ये इल्म नहीं है वो आदमी क्या है,
क्या बात है।
तो इसका इल्म जितना हमें पता है तो वो हम उसको अगर फैलाएंगे नहीं तो हमारी जो हमारी जिम्मेवारी है वो खत्म नहीं होगी कभी।
तो क्या कभी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रोफेशनली भी कई बार कंपटीशन हो जाता है, एक स्ट्रेस रहता है आगे बढ़ने का, अपने आप को और ऊंचाइयों पे ले जाने का, तो ऐसे में कितना सुकून देता है ये सब आपको?
मैं एक मेरे पास शेर है, वो रोशन साहब की गज़ल है कि आप यूँ मुझ पे मेहरबान हुए जाते हैं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है जो मेरे साथ हुआ है
जी।
आप यूँ मुझ पे मेहरबान हुए जाते हैं, मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं,
क्या बात है,
हम तो हंस लेते हैं दुख में भी, तेरी रहमत से लोग सुख में भी परेशान हुए जाते हैं।
बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बड़ी सच्चाई है ये
जी, बिल्कुल।
इसकी शरण में आकर और इसकी कही बातों को मानकर अगर जीवन जिया जाए तो वो सुखी हो जाता है इंसान, और संगीत तो वैसे ही बहुत बड़ा माध्यम है, और वो रूहानियत जो आपकी आवाज़ में है वो यूं ही सबके दिलों तक पहुंचती रहे, और गुरु का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। एक गीत आपसे और सुनना चाहते हैं, चलते चलते
मैं जी, लास्ट में एक गजल आपकी नजर कर रहा हूं
जी, बिल्कुल।
राधा को मिले श्याम, मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। राधा को मिले श्याम, मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। शबरी को मिले राम, मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। ना मैंने कुछ दिया ना कुछ लिया आपने, ना मैंने कुछ दिया ना कुछ लिया आपने, ना मैंने कुछ दिया ना कुछ लिया आपने। बिन मांगे बिना दाम, मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए। बिन मांगे बिना दाम, मुझे आप मिल गए, मुझे आप मिल गए।
क्या बात है, क्या बात है। सुरेंद्र जी, चलते चलते सिर्फ एक और बात आपसे जानना चाहते हैं
जी।
जो अभी हमारे बच्चे और आ रहे हैं संगीत में और अपना करियर बनाना चाहते हैं
जी,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बाहर भी ये बात कहता हूँ हर जगह, कि अच्छा गाना सीखें
जी
और अच्छी शायरी को चूज़ करें, ताकि जो हमारा आने वाला कल है वो अच्छा हो सके
जी।
तो मेरी यही सबसे दरख्वास्त है और सबसे मेरा ये नम्र निवेदन भी है कि आप जितना भी हो सके अच्छा अच्छी तालीम लेकर गाएं तो आगे आने वाला कल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह गुरुदर के साथ जुड़े रहें, इसी तरह दिल से गाते रहें और सुनने वालों के दिलों तक पहुंचते रहें।
जी जी, मैं जाते जाते एक छोटा सा शेर आपकी नज़र करूंगा कि फिर मुलाकात ज़रूरी होगी, फिर मुलाकात ज़रूरी होगी, वरना हर बात अधूरी हो।
क्या बात है,
बहुत बहुत
तो जी अधूरी बात हम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार फिर आपसे मुलाकात करें, भक्ति संगीत में एक बार फिर आपको बुलाएं।
जी जी बिल्कुल।
यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया धनंकार जी।
धनंकार जी, और अब भक्ति संगीत के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हुए आपको सुरेंद्र खान के गाए गीत के साथ ही छोड़े जा रहे हैं। अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाजत मुक्ता को, नमस्कार, धन निरंकार।
मिल गई खुशियाँ तमाम आपसे मिलने के बाद,
मिल गई खुशियाँ तमाम आपसे मिलने के बाद,
गम से अब कैसा कलाम,
गम से अब कैसा कलाम, आपसे मिलने के बाद मिल गई खुशियाँ तमाम, आपसे मिलने के बाद मिल गई खुशियाँ तमाम, आपसे मिलने के बाद।
बेखबर मंजिल से मैं भटका किया शामों सहर, बेखबर मंजिल से मैं भटका किया शामों सहर, पा गया अपना मकाम आपसे मिलने के बाद, पा गया अपना मकाम आपसे मिलने के बाद, गम से अब कैसा कलाम, गम से अब कैसा कलाम, आपसे मिलने के बाद मिल गई खुशियाँ तमाम आपसे मिलने।
आपसे मिलने के बाद आपके आ जाए काम, आपसे मिलने के बाद गम से अब कैसा कलाम, गम से अब कैसा कलाम, आपसे मिलने के बाद
मिल गई खुशियाँ तमाम आपसे मिलने के बाद, मिल गई खुशियाँ तमाम आपसे मिलने के बाद,
आपसे मिलने के बाद।
आपसे मिलने के बाद,
आपसे मिलने के बाद,
आपसे मिलने के बाद।